दीवा वीकेंड पर अपने घर आई हुई थी। वो अपने साथ इनाया को भी ले आई थी। दोनों सुबह साथ में नाश्ता कर रही थी। इस बीच दीवा इनाया से बात कर रही थी ताकि वो खुद को अकेला ना समझे। इनाया के पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, ऐसे में दीवा उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देना चाहती थी। वो एक अच्छी बड़ी बहन की भूमिका अच्छे से निभा रही थी। बातों ही बातों में इनाया ने दीवा से पूछा, क्या आप अभी भी रक्षित से प्यार करती हैं या आपके दिल में रक्षित को लेकर कोई फीलिंग्स हैं? दीवा ने बिना किसी झूठ के हाँ में सिर हिला दिया था। दीवा के चेहरे पर उदासी देखकर इनाया को अपने सवाल पर अफसोस हो रहा था। उसने तुरंत दीवा को हक करके कहा, अगर प्यार करना इतना बुरा होता है और ये इतनी तकलीफ देता है तो मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी। लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं इनाया, दीवा ने उसे सहलाते हुए समझाया। अगर सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं तो फिर आप क्यों उदास हो रही हैं? अपने दिल से रक्षित भैया की सारी यादें निकाल फेंकिए दीदी और किसी और को मौका दीजिए। क्या पता वो पहले ही आपकी जिंदगी में आ चुका हो, बस आप ही उसे पहचान ना पा रही हो। इनाया बड़ों की तरह दीवा को समझाने लगी। उसकी बातें सुनकर दीवा के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी जिंदगी में एक शख्स आ चुका था, लेकिन वो अच्छा तो किसी भी हिसाब से नहीं था। इनाया ने दीवा की बात मानते हुए अपना लैपटॉप खोला। उसने अपनी और रक्षित की फोटोज निकाली और उसे एक एक करके डिलीट करने लगी। हालांकि उसे ऐसा करने पर तकलीफ हो रही थी, पर यह मूव ऑन करने का उसका पहला कदम था। रक्षित की फोटो देखते हुए दीवा के मन में उन तस्वीरों से जुड़ी यादें ताज़ा होने लगी। जब आखिरी तस्वीर उसने डिलीट की तो उसे कल रक्षित से अपनी आखिरी मुलाकात याद आ गई। रक्षित के साथ भी बुरा हुआ था। अगर उसके पेरेंट्स ने खुद को नहीं मारा होता तो शायद उसके दिल में इतनी कड़वाहट नहीं होती। दीवा ने इस बारे में अपने मॉम डैड को कुछ नहीं बताया था। वो उन्हें कुछ कहकर हर्ट नहीं करना चाहती थी। दीवा अपने लैपटॉप में लगी हुई थी। इस बीच इनाया के पास उसकी फ्रेंड अमायरा का कॉल आया। उसने बात करके दीवा से कहा, दीदी क्या आप मुझे अमायरा के घर छोड़ दोगी? हम दोनों वहां से साथ में हॉस्टल चली जाएंगी। दीवा ने उसकी बात पर हामी भरी। इनाया को छोड़ने के बाद जब वो वापस मुड़ी तो उसका आर्यांश के घर जाने का मन नहीं था, इसलिए उसने सिस्टर नव्या को कॉल किया और उसे अपने साथ किसी रेस्टोरेंट ले जाने लगी। डॉक्टर गोयंका, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, नव्या ने हाथ में आइसक्रीम का टब लिए हुए उसे हक करते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर दीवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, लेकिन तुम्हें मुझे मिस करने की क्या जरूरत है? हम दोनों तो रोजाना मिलती हैं। रोजाना तो मिलते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर मल्होत्रा मुझे अच्छे मार्क्स देंगे और यहाँ इस हॉस्टल में रुकने की परमिशन देंगे। अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो मुझे फिर से अपनी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वो भी किसी दूसरे हॉस्पिटल से, नव्या ने उसे पूरी बात बताई। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं अपनी तरफ से तुम्हें फुल मार्क्स दूंगी और बाकी डॉक्टर को भी कहूंगी। चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगी, दीवा ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, जिस पर नव्या खुश हो गई थी। इधर दीवा आर्यांश के विला में ना जाने के लिए अपना संडे बिताने के लिए इधर उधर घूम रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आर्यांश उसे बिना बताए मुंबई पहुंच चुका था। आते ही वो सीधे कपूर इंटरनेशनल्स में गया। कपूर इंटरनेशनल्स में संडे को भी वर्किंग आवर्स होते थे। वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज खुश थे क्योंकि आर्यांश बाहर गया हुआ था। वो काफी सख्त रहता था, उसे काम में बेपरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। आर्यांश के लौट आने पर वे थोड़े दुखी हुए थे। वहीं इस वक्त आर्यांश अपने केबिन में था। वो आते ही काम लग गया था। उसके साथ इस वक्त उसका मैनेजर सार्थक खन्ना था। सार्थक ने उसे कुछ पेपर दिखाते हुए कहा, हमें ये लैंड खरीद लेनी चाहिए, आने वाले सालों में इसकी कीमत बढ़ने वाली है। मुझे पता है और मेरी कब से इसके ऊपर नजर है। ये लैंड गवर्नमेंट के अंदर आती है तो मैंने सारा सेटलमेंट भी कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे होते हुए कोई इस लैंड पर नजर डालने की भी हिम्मत कर सकता है, आर्यांश ने जवाब दिया। सार्थक ने सिर हिलाया और फिर गंभीर आवाज में कहा, अग्रवाल इंडस्ट्रीज इसे खरीदने की कोशिश कर रही है। मैंने सुना है आजकल वो हर एक ऑफिसर के ऑफिस में किसी ना किसी को ऑफर देकर भेज रहा है। उसे जो करना है करने दो, कोई फायदा नहीं होगा। खरीदने को तो मैं इस लैंड को अभी इसी वक्त खरीद सकता हूँ, लेकिन पिछली बार जब मेयर से मीटिंग हुई थी तब उसने इस लैंड के काफी ज्यादा पैसे बताए थे। मैंने एक बार के लिए इसे टाल रखा था, आर्यांश बोला। हाँ, मैंने भी सुना कि वो कुछ ज्यादा ही मुंह खोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अग्रवाल इस बात का फायदा उठा ले, सार्थक ने उसे सचेत करते हुए कहा। आर्यांश उस जमीन की कीमत समझता था, ऐसे में वो लैंड किसी और के पास जाती तो वो एक अच्छी डील खो सकते थे। उसने कुछ पल सोचा और फिर कोल्टोन में कहा, फिर ऐसा करो कि पूरे मार्केट में ये खबर फैला दो कि ये जमीन आर्यांश कपूर खरीदने वाला है। अगर किसी ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी उस जमीन पर अपनी आंख भी डालने की। आर्यांश ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था कि आर्यांश कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। शाम के वक्त जहां थक हार कर दीवा को आर्यांश के विला पर लौटना ही पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ आर्यांश अपने घर जाने के बजाय इस वक्त एक फार्म हाउस में पहुंचा। वो फार्म हाउस उसके फ्रेंड श्रेष्ठ मित्तल का था। वहां अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, जहां श्रेष्ठ के अलावा काफी सारी लड़कियां आई हुई थी। आर्यांश मुस्कुराते हुए अंदर गया। उसने देखा श्रेष्ठ हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए काफी सारी लड़कियों से घिरा हुआ था। आर्यांश को अपने पास आते देखकर श्रेष्ठ ने उन सबको वहां से हटा दिया था। वो उठकर आर्यांश के गले लगा। वो भी आर्यांश की उम्र का ही था। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, ऊपर से मुझे भी बुला लिया, आर्यांश ने उससे अलग होकर कहा। वो शिकायती निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। इसे तमाशा नहीं मेरे फ्रेंड, पार्टी कहते हैं, और तुम्हें भी काम से थोड़ा फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, श्रेष्ठ ने आई विंग करके कहा। आर्यांश ने उसकी बात की तरफ ज्यादा गौर नहीं किया। उसने इधर उधर देखा तो लड़कियों के अलावा वहां कोई नहीं था, जबकि उसे घर में ज्यादातर उसके मॉम डैड रहते थे। अंकल आंटी कहाँ गए हैं, आर्यांश ने तुरंत पूछा। वो तो वर्ल्ड टूर पर गए हैं, तभी तो मैं यहाँ पर पार्टी कर रहा हूँ। वैसे तुम चाहो तो तुम्हारे भी एंजॉयमेंट के पूरे इंतजाम कर रखे हैं, श्रेष्ठ ने मुस्कुराकर कहा और ऊपर कमरे की तरफ इशारा किया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आर्यांश ने सख्ती से जवाब दिया। तब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत परेशान रहती होगी ना, उसका बॉयफ्रेंड इतना सड़ूसा है, तुमसे बोर नहीं हो जाती वो, श्रेष्ठ ने आर्यांश को परेशान करना शुरू कर दिया। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आर्यांश ने जवाब दिया। हालांकि गर्लफ्रेंड शब्द बोलते हुए उसकी आंखों के सामने दीवा का चेहरा आने लगा, पर फिर भी उसने श्रेष्ठ को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। आर्यांश का सड़ा हुआ मूड देखकर श्रेष्ठ समझ गया था कि वो इन सबसे और इरिटेट हो जाएगा। श्रेष्ठ ने गहरी सांस ली और आर्यांश का हाथ पकड़कर कहा, चल ठीक है, फिर अकेले में बात करते हैं, लगता नहीं कि मेरा ये इंतजाम तुम्हें पसंद आएगा। आर्यांश ने उसकी बात पर हामी भरी और इसी के साथ वो दोनों ऊपर टेरेस पर चले गए थे। वहां बिल्कुल शांति थी, वही शांति जो आर्यांश को अपने आसपास पसंद होती थी। वो दोनों वहां ऊपर लगे सोफे पर लेट गए और आसमान की तरफ देखने लगे। कुछ देर तक उन दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी छाई रही। फिर अचानक उस खामोशी को तोड़ते हुए आर्यांश ने कहा, तुम्हें पता है कि मुझे ये शोर शराबा पसंद नहीं है, फिर भी तुमने मुझे यहाँ बुलाया, ये सब तुम मुझे परेशान करने के लिए करते हो ना।
श्रेष्ठ ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ शरारती मुस्कुराहट दी। वो उसे कोई सफाई नहीं देना चाहता था। एक बार फिर उनके बीच वही शांति छा गई थी, लेकिन इस बार आर्यांश के बजाय श्रेष्ठ ने कहा, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते, अब बहुत साल बीत गए हैं, तुम्हें उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ किसकी बात कर रहा था आर्यांश ये अच्छे से समझता था। अचानक उसके चेहरे पर दर्द उभरा। जब भी उसका जिक्र होता आर्यांश उसकी यादों में खो जाता, उसका अधूरा प्यार। आर्यांश ने मायूस आवाज में कहा, अगर आज वो जिंदा होती तो मेरी भी एक फैमिली होती। जब भी उसका जिक्र होता आर्यांश खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता। हमेशा कॉन्फिडेंट दिखने वाला आर्यांश अब लाचार और बहुत दुखी नज़र आ रहा था। उसके चेहरे के ये भाव किसी ने मुश्किल से देखे होंगे। तुम जानबूझकर खुद को तकलीफ़ दे रहे हो आर्यांश, तुम अच्छे से जानते हो कि एक बार जो इस दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आता, क्यों ज़िद पर अड़े हो, श्रेष्ठ ने उसे समझाते हुए सख्ती से कहा। आर्यांश आसमान में देख रहा था अपने प्यार को उन सितारों में ढूंढते हुए। उसे हमेशा यही लगता था कि जो सबसे चमकता सितारा है वही उसका प्यार है, जो हमेशा के लिए उससे दूर चला गया है। जब भी दोनों साथ थे तब उस लड़की को नहीं पता था कि आर्यांश की असली पहचान क्या है। वो उसे सच्चे दिल से प्यार करती थी, एक मासूम सा लड़का समझकर। श्रेष्ठ आर्यांश के जवाब का इंतजार कर रहा था। अचानक आर्यांश ने सर्द आवाज में कहा, नीचे मौजूद इतनी लड़कियों में से क्या तुम किसी से भी सच्चा प्यार करते हो, या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? नहीं, श्रेष्ठ ने जवाब दिया। फिर तुम मेरे दिल की तकलीफ कैसे समझ सकते हो कि सच्चा प्यार खोने पर क्या हालत होती है? ये तभी समझ आता है जब आपको किसी से सच्चा प्यार हो और आप उसे हमेशा के लिए खो दो, आर्यांश ने इस मायूसी के साथ कहा। अच्छा ठीक है, मैं कभी नहीं समझ सकता और ना ही मुझे समझना है, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें ज्ञान देने चला था। चलो अब किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। क्या तुमने गोयनका एम्पायर के बारे में सुना है, श्रेष्ठ ने हार मानते हुए कहा। उसने अपनी सिगरेट जलाई और साथ ही एक जली हुई सिगरेट आर्यांश की तरफ बढ़ा दी थी। आर्यांश ने अनजान बनते हुए सिर हिला दिया था। वो जानना चाहता था कि आखिर श्रेष्ठ किसके बारे में बात कर रहा है। हाँ तो सुनो, गोयनका एम्पायर का मालिक फिर से लौट आया है। तुम्हें पता है मेरे पास कुछ महीने पहले वो एक डील लेकर आया था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने मना कर दिया। बाद में पता चला कि उनके मैनेजर ने उनकी कंपनी हथिया ली है। मैं उससे मिला था, उसका नाम रक्षित दीवान है, एक नंबर का घमंडी आदमी था। और अब नई खबर सुनने में आई है कि वो आदमी जेल में है और उसने अपने ही मालिक को फंसाने की कोशिश की है। देखो ना आजकल बिजनेस वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है। आर्यांश का मूड सही करने के लिए श्रेष्ठ उसे गोयनका एम्पायर की कहानी सुनाने लगा। आर्यांश भी ऐसे सुन रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अचानक श्रेष्ठ ने उसे पूछा, इस मामले में किसी ने तो उनकी मदद की होगी, तभी तो रक्षित दीवान पकड़ा गया। क्या तुम जानते हो कि ये किसने किया है?
नहीं, मुझे नहीं पता, आर्यांश ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसने इस बारे में काफी रहस्यमय तरीके से काम करवाया था। उसने सार्थक को सख्त हिदायत दी थी कि किसी को इस बारे में पता न चले। श्रेष्ठ को टालने के लिए आर्यांश ने कहा, बिजनेस वर्ल्ड में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो?
मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो मैनेजर गोयंका एम्पायर के मालिक की बेटी का बॉयफ्रेंड था। सुना है वो अब जेल में है और वो लड़की उससे मिलने गई थी। वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। क्या लगता है तुम्हें, क्या वो अपने प्यार को बाहर निकालने की कोशिश करेगी? उसके लिए तो मुश्किल रहा होगा ना, बेचारी का प्यार भी छिन गया और कुछ कर भी नहीं पा रही होगी। आखिर अपने बाप के सामने क्या बोले वो? श्रेष्ठ लगातार बोले जा रहा था जबकि आर्यांश के चेहरे के भाव बेहद सर्द होने लगे थे। आर्यांश अच्छे से समझ सकता था कि श्रेष्ठ यहाँ दीवा की बात कर रहा है, तो दीवा उसके पीछे से रक्षित से मिलने के लिए पहुंची थी। ये बात आर्यांश के सीने में किसी तीर की तरह लगी और वो उसी वक्त उठकर वहां से जाने लगा।